स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 22 नवंबर और दिन शुक्रवार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी ने कहा मौके परस्ती का है गठबंधन।
विचार और सिद्धांतों के आधार पर ये अलायंस नहीं हुई है, ये अपॉर्चुनिज्म की अलायंस है और ये टिकेगी नहीं और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार भी नहीं दे पाएगी। ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का काफी इसमें नुकसान होगा।
विवेचना में आज जब भारतीय पर्वतारोहियों ने छुआ आसमान।
मैं इनके साथ तो नहीं था पार्टीज के साथ, लेकिन मेरा ध्यान उधर ही था। जितने ये लोग चढ़ रहे थे मैं भी स्टेप बाय स्टेप इनके साथ चढ़ रहा था।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की आज एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में सीएम पद के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि चर्चा अभी जारी है और कल ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस गठबंधन को अवसरवादी कहा है और कहा है कि ये गठबंधन स्थायी सरकार नहीं दे पाएगा। महाराष्ट्र में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। यूरोप के दो मोस्ट वांटेड अपराधियों को 20 साल बाद आइवरी कोस्ट में पकड़ा गया है। जॉन क्लाउड लाकोते और उनके साथी इल्दे वॉन एकर को बेल्जियम में एक ब्रितानी कारोबारी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये दोनों बेल्जियम से भागकर दक्षिण अफ्रीका आ गए थे। साल 2007 में लाकोते को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें सजा मिले इससे पहले वो जेल से भाग गए थे। बेल्जियम ने कहा है कि वो इन दोनों अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए आइवरी कोस्ट से गुजारिश करेगा। सूडान में गवर्निंग काउंसिल की एक सदस्य ने लोगों से अपील की है कि वो धैर्य रखें और बदलाव का इंतजार करें। इस साल की शुरुआत में सूडान में राष्ट्रपति उमर बशीर का तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद लोगों ने मांग की थी कि देश में नागरिक काउंसिल सत्ता संभाले। इसके बाद सेना और नागरिक प्रतिनिधियों को मिलाकर 11 सदस्यों की एक गवर्निंग काउंसिल बनाई गई थी। काउंसिल की एक सदस्य आयशा मूसा ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बेहद धीमी है और महिलाओं की विकास में अवरोधक बनने वाले नियमों को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टी की अहम नेता और सूडान डॉक्टर्स यूनियन से जुड़ी डॉक्टर सारा अब्दुल गलील कहती हैं कि सूडान सही दिशा में तरक्की कर रहा है।
We are on the pathway to achieve justice and we have to be very vigilant and we have to achieve it otherwise
हम न्याय की राह पर हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हम सही रास्ते पर रहें, नहीं तो हम असल मायनों में एक गणतांत्रिक देश नहीं बना पाएंगे। देश में जो क्रांति हुई उसमें न्याय सबसे अहम मुद्दा है और हमें पारदर्शी, समर्पित और पूरी तरह से स्वतंत्र न्याय व्यवस्था कायम करनी है। हम ये स्वीकार करते हैं कि चुनौतियाँ बहुत हैं और राह भी मुश्किल है। सूडान डॉक्टर यूनियन से जुड़ी सारा अब्दुल गलील के शब्द। सूडान में गवर्निंग काउंसिल ने वादा किया है कि साल 2022 तक देश में चुनाव करवाए जाएंगे। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है और यूरोजोन में शामिल देशों को आर्थिक विकास में और अधिक निवेश करने की जरूरत है। बैंक की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लगार्ड ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर सरकारों को जिम्मेदारियां निभानी हैं और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए।
If countries boost growth by investing in productive areas of the economy, it not only lifts demand in the short run, it also
अगर देश अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़े हिस्सों में निवेश करेंगे तो इससे बाद न केवल मांग बढ़ेगी बल्कि लंबे वक्त में इससे बाजार में प्रतिद्वंदिता भी बनी रहेगी। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात से गुजर रही है तब देश के भीतर बढ़ती मांग से नौकरियां भी बचेंगी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगर्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के बगदाद में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में आज 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत आंसू गैस का एक गोला सीधे सर पर लगने से हुई। इराक में अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 22 तारीख और दिन है शुक्रवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र से। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुंबई के नेहरू सेंटर में कांग्रेस के अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार और तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी, बल्कि अभी तक बैठक जारी है। लेकिन बैठक के बीच में ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे बाहर निकले। पवार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, माफ करिएगा, आपको शरद पवार की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे पर तीनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। सीधे चलते हैं मुंबई। इस वक्त हमारे सहयोगी मयूरेश टेलीफोन लाइन से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वो उसी जगह मौजूद हैं जहां मीटिंग चल रही है, यानी कि नेहरू सेंटर। मयूरेश, क्या अब ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे, या अभी भी कुछ इफ बट कुछ है?
आधिकारिक तौर पर अगर घोषणा है कि हम माने तो वो शायद कल होगी। जैसे शरद पवार ने भी पहले कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा जाते वक्त कि उद्धव ठाकरे नेतृत्व करे, इसके ऊपर दूसरा कोई मत नहीं हो सकता, इस पर राय जो है वो बन चुकी है। तो अगर इसका हम मायने निकालें तो उद्धव ठाकरे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जैसे शरद पवार यहाँ से गुजरे और उद्धव ठाकरे नीचे आए, उनसे जब ये सवाल मैंने ही पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के बारे में कुछ हुआ है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि सब आपको फाइनल होने के बाद बताया जाएगा। तो शायद ये फाइनल हो चुका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा जो है वो कल होगी। लेकिन शरद पवार ने जो कहा, तो अगर आम राय बन गई है तो उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री।
और जो और दो तीन बड़े मुद्दे हैं कि क्या 5 साल या 2.5 साल, स्पीकर, उप मुख्यमंत्री, इस बारे में क्या कोई खबर छन कर आप तक पहुँच रही?
जी नहीं, इसपे ऊपर पुष्टि जिसकी की जाए उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बातें नहीं आई, क्योंकि आज जो भी अहम बैठक जो हो रही थी जिसमें अहमद पटेल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से आए हुए थे, शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, आदित्य ठाकरे थे, संजय राउत थे, तो यही फाइनलाइज हो रहा था कि जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं वो किसकी तरफ जाए, मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल जो है वो क्या आधा आधा बांटा जाए, और स्पीकर के बारे में भी। जो हमें जानकारी है तो दो उप मुख्यमंत्री है जो वो रहेंगे और स्पीकर की जो पोस्ट है वो शायद कांग्रेस की तरफ जाएगी। हाँ, राष्ट्र एनसीपी की तरफ से ये आवाज आ रही थी अंदर से कि उनको भी 2.5 साल का सीएम पद जो है वो मिले, क्योंकि उनके सिर्फ 2 विधायक कम है शिवसेना से, लेकिन शायद ये मांग अब छूट गई है और शिवसेना के मुख्यमंत्री पद भी पर ही आयाम राय जो है वो बन गई है। लेकिन हमें शायद इंतजार करना पड़ेगा कि इतनी बार अनेक मांगे आई हैं और अनेक डिसीजन बदले हुए हैं, तो जब तक
कुछ भी कहना मुश्किल है
शायद।
जी, बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका इस जानकारी के लिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि यह गठबंधन विचारधारा की नहीं बल्कि अवसरवादिता का गठबंधन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी,
देखिए इनमें वैचारिक तालमेल नहीं है। शिवसेना जिस विचारधारा पर चलती है उसको पूरी तरह कांग्रेस विरोध करती है, और कांग्रेस जिस विचारों पर चलती है उसको शिवसेना विरोध करती है, और एनसीपी भी शिवसेना के विचारों से तालमेल नहीं रखती। तो विचार और सिद्धांतों के आधार पर ये अलायंस नहीं हुई है, ये अपोर्चुनिज्म की अलायंस है और ये टिकेगी नहीं और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार भी नहीं दे पाएगी। ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का काफी इसमें नुकसान होगा अगर होती है तो, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए निश्चित रूप से अस्थिर सरकार ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी।
ये थे नितिन गडकरी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में क्या हालात रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर पहुंचा। सिन्हा के साथ इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण और पूर्व वाइस एयर मार्शल कपिल काग भी शामिल हैं। इससे पहले भी 370 के हटाए जाने के बाद यशवंत सिन्हा ने कश्मीर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे से ही लौटा दिया गया। इस बार भी उन्हें होटल में मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं मिली, तो श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर ने इन तीनों से होटल के बाहर ही बात की। रियाज मसरूर ने सबसे पहले यशवंत सिन्हा से पूछा कि ऐसा क्या है कश्मीर के बारे में जानने के लिए जो वो दिल्ली में बैठकर नहीं जान पा रहे थे और उन्हें घाटी का दौरा करना पड़ा।
यहाँ के बारे में बिल्कुल दो तरह के अलग अलग रिपोर्ट्स आती थी, एक सरकारी रिपोर्ट आती थी, एक सरकारी मीडिया की रिपोर्ट आती थी और एक विदेशी मीडिया जो फॉरेन मीडिया है वो यहाँ के बारे में रिपोर्ट करते थे। हम लोगों का आने का मकसद मेनली यही होता था भाई, हम खुद आके देखें कि यहाँ क्या हालात हैं। रास्ते में हम देखते आ रहे हैं सारी दुकानें बंद थी। इसको अगर कहा जाए कि नॉर्मल लाइफ है, यही नॉर्मल सी है, तो ये न्यू नॉर्मल है, पुराना नॉर्मल नहीं है। 5 अगस्त के बाद से यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक लॉस हुआ है क्लैम डाउन की वजह से, उसको एसेस कर।
कपिल काक जी, चूँकि जो गृह मंत्री हैं वजीर दाखिला, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, पूरे मुल्क में ये खबर आई कि उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप जैसे लोग उस व्यू पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, किस तरह से आंकेंगे आप हालात को? क्या आप लोगों से मिलेंगे या सियासतदानों से मिलने की कोशिश करेंगे?
कोशिश करेंगे सियासतदानों से को भी मिलने की। मेरा तीसरा यहाँ पे विजिट है पिछले 3 महीनों में, और मैं देख रहा हूँ वो कोई नॉर्मल सी, जिसके बारे में यशवंत जी अभी बात कर रहे थे, नॉर्मल सी है नहीं। अब मुझे बताइए कौन सी नॉर्मल सी आप ढूंढ रहे हैं जब आपके पास इंटरनेट नहीं है। आजकल तो सारे विश्व में माना जाता है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है मतलब आपकी एक किडनी चली गई है, कि इतनी यू नो एक्सेसिंग द मीडिया, एक्सेसिंग द वर्ल्ड, ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है, ये तो पहली है। दूसरा जो एक हमें लगता है कि 5 अगस्त और 6 अगस्त पे जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, इस पे क्या असर कश्मीरियों पे पड़ा है, मैं भी एक कश्मीरी हूँ, मुझे लगता है गहरा असर पड़ा है, एक दर्द का असर है। और हम देख रहे हैं ये एक फ्रोजन इम्प्रिजनमेंट है, अब 70 लाख लोग अपने घरों में पिछले 110-12 दिनों में रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सी कैसे हो सकती है? दुकानें बंद हैं, तो अब हमारी कोशिश है कि ये असेसमेंट करें, और सबसे ज़्यादा कि जो कुछ भी हमारी ऑब्जर्वेशन है हम सारे हिंदुस्तान को भेजते हैं। ये भी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान समझे, ये मीडिया पे न जाए, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स देखे। आप जानते हैं 10 यहाँ पे अभी तक सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आए हुए हैं, ये हमारा 10वां ट्रिप है, इससे पहले 9 डेलीगेशन आए हैं, ग्रुप्स आए हैं, उन्होंने असेसमेंट की है और उनकी असेसमेंट सारी दुनिया में छपी है।
बिल्कुल ब्रीफली भारत भूषण जी, बारिश भी हो रही है, मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेट की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन है जो अनुराधा भसीन जी ने दी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि पूरी तरह से मीडिया काम कर रहा है, और ये सच भी है अपेरेंटली, क्योंकि यहाँ अखबार निकलते हैं। तो किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपने महसूस की एज जर्नलिस्ट?
देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो ये हैं कि यहाँ से सही रिपोर्ट आ रही है बाकी इंडिया में कि नहीं, ये किसी को पता नहीं है। दूसरा ये कि रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप इंटरनेट नहीं देंगे लोगों को, सोशल मीडिया बंद कर देंगे, एडिटर्स कैसे कमीशन करेंगे स्टोरीज, उनकी स्टोरी चली जाती हैं, एक होटल में कमरा खोल रखा है, लेकिन उसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। सर्वेलेंस चल रहा है यहाँ पे हर एक के ऊपर, पूरी डिबेट जो है सिक्योरिटाइज हो गई है, आप पूरी सिक्योरिटी के बारे में बात करते रहते हैं, पुलिस ने एक को नहीं मारा, पुलिस ने एक को नहीं मारा, और कुछ अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हटा दीजिए ना पुलिस, हटा दीजिए सिक्योरिटी। हम इस बार ये देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, हम उनसे पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, खाने पीने का सामान घर में है कि नहीं, शादी ब्याह हो रहा है कि नहीं, फ़ोन पे अपने बच्चों का हालचाल पूछ पाते हैं कि नहीं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको फीस भेज पाते हैं कि नहीं, जब इंटरनेट बैंकिंग बंद है कैसे पैसे भेजेंगे वो।
तो यशवंत सिन्हा अपने 2 साथियों के साथ पहुंचे श्रीनगर।
बीबीसी इंडिया बोल।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आखिर बार बार निशाने पर क्यों? देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्या विपरीत विचारधाराओं की रस्साकशी का अड्डा बन गई है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 नवंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आज है शुक्रवार यानी विवेचना का दिन, जब भारतीय पर्वतारोहियों ने छुआ आसमान। हाल ही में मशहूर पर्वतारोही मनमोहन सिंह कोहली की आत्मकथा प्रकाशित हुई है, ए लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, जिसमें उन्होंने अपने रोमांचक करियर की कई बातों को साझा किया है। कोहली उस भारतीय दल के प्रमुख थे जिसके 9 सदस्यों ने 1965 में एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं भारतीय पर्वतारोहियों की उस उपलब्धि को।
तू है जहाँ है आसमां, मैं हूँ इस जमीन पे यहाँ, हमको पर मिलना तो है कितनी भी हो दूरियाँ। कितनी भी हो मजबूरियां वो हो के रहेगा।
29,029 फीट की ऊंचाई को आप आसमान नहीं तो और क्या कहेंगे। दुर्गम चढ़ाई, गहरे ढलान, ऑक्सीजन की कमी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवा और शून्य से भी 40 डिग्री नीचे के तापमान के बावजूद हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचकर नीचे की दुनिया को निहारे। वैसे तो पर्वतारोही एवरेस्ट को तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल चढ़ाई नहीं मानते, लेकिन इसका सबसे ऊंचा होना ही इसे सबसे खास बनाता है। यूं तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरके ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन 1965 में पहली बार किसी भारतीय दल ने न सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई बल्कि एक दल के 9 सदस्यों द्वारा एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। कैप्टन MS कोहली इस 21 सदस्यीय भारतीय दल के नेता थे।
हम जब भी समझते हैं जितनी चोटियां हैं पहाड़ों की, हिमालय की, हम उनको मंदिर की तरह मानते हैं। हम अपने अपने मजहब के हिसाब से सब लोग ऊपर जाके करते हैं प्रेयर। तो आपने देखा होगा कि हमारी किसी भी किताब में, मैंने 27 किताबें लिखी हैं, किसी किताब में भी कांकस का वर्ड यूज़ नहीं किया। हम लोग होमेज देते हैं, ऊपर जाके भगवान की मथा टेकते हैं।
20 मई 1965 को AS चीमा और नवांग गोम्बू सुबह 3 बजे उठे। उन्होंने गर्मागर्म कॉफी पी, अपने आप को अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार किया और 5 बजे धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से एवरेस्ट की ओर बढ़ निकले। एडवांस बेस कैंप और बेस कैंप पर तेजी से धड़कते दिलों के साथ सभी लोगों ने अपनी दूरबीनें दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तान रखी थी
कि ये कुछ 5:30 बजे सुबह निकले थे और दिन को 9:30 बजे सुबह समिट के ऊपर पहुंच गए। आधा घंटा रहे वहां पे। इतना जल्दी समिट पे कोई भी नहीं पहुंचा था। कई लोग हमारे जो आइडियंस सुन रहे हैं उनको ये नहीं ख्याल आता कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल तो है लेकिन वापस आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अब जो आदमी समिट के ऊपर पहुंचता है वो खुश होता है सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद उसको फिक्र लग जाता है कि अरे मैं जिंदा बेस कैंप वापस भी पहुंचूंगा कि नहीं।
मैंने कैप्टन कोहली से पूछा, आप तो नीचे थे, आपको कब और कैसे पता चला कि चीमा और गोम्बू एवरेस्ट पर जा पहुंचे हैं?
सबसे पहले तो गुरदयाल सिंह ने कहा कि वो लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया है, कोई 8:30 बजे मैंने देखा है अच्छी स्पीड पे ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी जा चुके हैं तो काफ़ी उम्मीद है हो जाएगा काम। तो जब वो 10-20-25 फुट नीचे रह गए समट के तो कर्नल कुमार ने वॉकी टॉपी पे शाउट किया कि कोहली कांग्रेचुलेशंस दे आर ऑलमोस्ट ऑन द समट नाउ। 10 बजे आके कोई 12:30 करीब 1 बजे वो लास्ट कैंप में पहुँचे तो फिर मुझसे चीमा और गोम्बू दोनों ने बात की। उन्होंने कहा कि बड़ा साहब हमने कर लिया है। तो मैंने फिर फटोफट मैसेज इंडिया भेजा तो शाम की रेडियो न्यूज में भी आ गया 20 को और अगले दिन पेपरों में बैनर हेडलाइन में आ गया।
इसके बाद 2-2 दिनों के अंतर पर सोनम ग्यात्सो, सोनम वांग्याल, CP वोहरा और अंग कामी समिट पर पहुंचे। पूरे अभियान के दौरान सिर्फ चढ़ाई के बारे में ही बात नहीं होती, मौसम खराब होने पर मनोरंजन भी होता और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी। नरेंद्र कुमार उस अभियान दल के उपनेता थे।
जब मौसम खराब हो गया तो हम सब नीचे आ गए। अब 10-15 दिन इंतजार करना था तो हम खूब ताश खेलते थे। और एक दिन मैं अपने साथ एक जैसी जद्दी का पांव होता ना वो यहाँ से लकड़ी का बना के लेके गया था। तो मेरा टेंट सबसे आगे होता था तो एक दिन मैंने वो जद्दी की टेंट उसके पांव से करके निशान लगा दिए तो फर्स्ट आदमी जो गया टॉयलेट के लिए यती, यती, यती। सारी दुनिया ये सब लगे अपने वायरलेस हेडसेट भेजने के लिए हमने जाति के फुट पे देखे हैं ऐसे डोंट वरी। ये तो मैंने मजाक किया था।
25 मई की सुबह जब मेजर अहलूवालिया जगे तो फू दोरजी उनके लिए चाय लेकर आए। उन्होंने कहा कि कल रात कैंप 3 पर जबरदस्त एवलांच आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चाय छोड़कर अहलुवालिया बाहर भागे। वहां उन्होंने जो दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई।
हमारी जो समिट पार्टी थी उसको क्लाइम करना था 29 मई को, तो उससे पहले हम असेंबल होते हैं एडवांस बेस कैंप, कैंप वन, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो हमारा जो सामान था पर्टिकुलरली ऑक्सीजन सिलेंडर, वो हमने कैंप थ्री में हमारे से जो आगे था वहाँ स्टॉक कर दिया था सारा। तो हमारे जाने से एक दिन पहले सवेरे हमने बड़ा जोर का धमाका सुना, तो हमने कहा ये तो एवलांच है। तो हमारा जो कुक है वो आया, 6 बजे थे सवेरे, कहता जी वो देखो सामने आपका कैंप तो बिल्कुल कवर हो गया बर्फ से। और जो लीडर थे कोहली साहब, वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आप लोग नहीं जा सक पाओगे बिकॉज आपकी जो ऑक्सीजन है सारी दब गई है उधर। तो उन्होंने कहा कि फिर ये एक्सपीडिशन हम क्लोज करते हैं। मैंने उनको समझाया बताया कि देखिए आप, हम सिर्फ 6 लोग चढ़े अभी तक, पर अगर हम एक या दो और आदमी ऊपर भेज देते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। मैंने कहा मुझे आप 5-6 रुपये दीजिए, मैं जाता हूँ देखता हूँ, नहीं होगा तो मैं आ जाऊँगा वापसी। तो हम उधर गए, हमने देखा वो तो बिल्कुल सारा सफ़ेद था, तो हमें समझ नहीं आई कि कहाँ से शुरू करें। तो फिर हमने कहा कि चलो 5 डायरेक्शन से हम थोड़ा थोड़ा खोदना शुरू करते हैं आइसक के साथ। 1 घंटा 1.5 घंटा खोदा, कुछ नहीं मिला। फिर सब शर्पा और हम निराश होकर हमने कहा भगवान को जरा प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने भी की, मैंने भी की, फिर हमने डिगिंग शुरू कर दी। फिर एक मेरा आइसक जो था वो जोर से क्लिक की आवाज़ आई टिंग करके, तो वो था सिलेंडर के साथ लगा, और वो फिर एक सिलेंडर निकला, 2-3 सारे सिलेंडर, क्योंकि और चीज़ों की जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, वो फिर हमें मिल गए। और जब मैं आया तो कैप्टन कोहली खुश होकर कहते हैं हाँ आप ट्राई करो।
29 मई को अहलुवालिया, फूदोरजी, बहुगुणा और रावत ने 2-2 के ग्रुप में एवरेस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर गए होंगे कि बहुगुणा ने कहा कि वो और आगे नहीं जा सकते।
हम दो पार्टी थी, मैं था और फूदोरजी एक में, हम आगे और हमारे साथ पीछे बहुगुणा और रावत। सवेरे सवेरे हम 4 बजे के करीब उठ गए थे, और 4 बजे उठ के तैयार थी और वो जूते क्रैम्पॉन डाले, ज्यादा चीज तो डाल के ही सोते हैं। सोचा पानी गर्म करें, पर नहीं, वो पानी भी गर्म नहीं हो पाया। और फिर हमने सामान अपना उठाया और कोई 5:30-5:30 बजे के करीब हम बाहर आके चलना शुरू। तो मेरे जो पांव थे वो बड़े ठंडे हो रहे थे, पता भी लग रहा है कि नहीं। फिर उसने कहा कि नहीं, जमीन में बर्फ में जोर जोर से किक करो, किक कर करके थोड़ी देर में गर्म हो गए। जैसे ही चलने लगे दूर से हमने देखा वो कोई आ रहा था, फूदोर जी कहता है ओ यटी आ रहा है यटी। तो थोड़ी देर तक रुके तो देखा रावत अकेला चला आ रहा है। वो हमने कहा तेरे को क्या हो गया, कहता है वो भोगना थोड़े उनको खारिश हो रही है, बीमार है, वो कहते नहीं आएंगे। तो वो वहीं पे मैं फिर मैंने कहा मैं अकेला चलता हूँ। तो मैंने कहा तेरे को डर नहीं लगता, अकेला तो कैसे स्लिप कर जाए, कहते नहीं नहीं मैं सोचता था कि आप लोगों को मिल लूँगा। फिर उसको हमने अपनी रोप में डाला और आगे चले, और फिर चलते चलते बाकी हिस्ट्री है।
तीनों ने हाथ में हाथ डाले, एक साथ एवरेस्ट पर कदम रखा। वहां पर पहले आए दल द्वारा लगाया गया तिरंगा झंडा फहरा रहा था, लेकिन हवा के जोर से तार तार हो चुका था।
सबसे पहले हमने भगवान का शुक्रवाद किया, हमें कहा गया था कि आपके टाइम में वेदर खराब होगी, मेट की रिपोर्ट थी, बहुत तेज हवा चल रही थी। एवरेस्ट क्लाइंब करने से आपको प्रूफ लेना पड़ता है, फोटोग्राफी। तो मैं क्योंकि ऑफिशियल फोटोग्राफर था और बाकियों को इतनी अच्छी फोटोग्राफी भी नहीं आती थी, तो मेरे को काफ़ी फोटो लेनी पड़ी चारों तरफ। और अब वो फोटोग्राफ हर एक जगह इस्तेमाल होती है। फूदोर जी कहता है मैं आपके लिए एक तोहफा है आपके लिए। मैंने कहा क्या है तोहफा यार? तो उसने कहा कि जी आप बैठ ये खड़े हो जल्दी। मैंने कहा जल्दी करो क्योंकि मैं नीचे चलना है और ऑक्सीजन कम हो रही है। उसने एक थर्मस निकाली छोटी, उसमें गर्म कॉफ़ी, और फिर हमने वो गर्म कॉफ़ी की, उसका आनंद ही कुछ और था। और समिट के ऊपर जब हम थोड़ा स्क्रैच कर रहे थे, किसी ने चॉकलेट रख दी हुई थी, तो फिर हमने वो चॉकलेट निकाल के वो चॉकलेट खाई और ये कॉफ़ी पी। बद यही आज 29 को हमने यही खाया था बस। मैंने फिर अपनी रिस्ट वॉच रख दी, फिर मैंने रोजरी रखी अपनी, गुरु नानक की फोटोग्राफ रखी। क्या है कि एवरेस्ट टाइम आता है नीचे उतरने के लिए, ऑल दो मतलब यू फील प्राउड वो प्राइड आप में आती है कि आप कुछ कर पाए, पर एक वो दुखित वो सैडनेस होती है, टिंज ऑफ सैडनेस वो एक आने लगी कि अब तो देयर इज नथिंग हाई टू क्लाइम एंड एवरी रोड विल लीड डाउन।
कोहली और नरेंद्र कुमार शिखर पर खुद नहीं गए क्योंकि ये दोनों दल का नेतृत्व कर रहे थे।
मैं इनके साथ तो नहीं था पार्टीज के साथ, लेकिन मेरा ध्यान सब उधर ही था और जितने ये लोग चढ़ रहे थे मैं भी स्टेप बाय स्टेप इनके साथ चढ़ रहा था। जितने ये थक रहे थे मैं भी इतनी ही थक रहा था। जब समिट के ऊपर पहली पार्टी पहुंची बहुत खुश हुआ, सेकंड पहुंची तो मैं नाचने लगा, तीसरी पहुंची तो फिर तो नाचने का भी अब मैंने कहा क्या बहुत ही खुशी, और चौथी का तो मुझे याद ही नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं पागल ही हो गया।
मैंने मेजर अहलूवालिया से पूछा कि जब आप सब पर्वतारोही पहली बार आपस में मिले तो क्या हुआ।
वो सब लोग बाहर आ गए कैंप से दौड़ के, सबने मिले जफ्फी पर डाल के और उठाया, कोई उठा रहा है, कोई उठा रहा है, मतलब हालत बिगाड़ दी सारी, जोर जोर से दबा रहे हैं, हग कर रहे हैं, पर वो मोमेंट और होता है, जॉयफुल मोमेंट होता है, और सब में खुशी आ गई कि एक बड़ा बहुत बड़ा काम हुआ। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हुई, एक तो हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और दूसरा हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, और उसके बाद एवरेस्ट 5 साल के लिए बंद हो गया।
जब ये दल भारत पहुंचा तो पालम हवाई अड्डे का दृश्य देखते ही बनता था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पहुंचे हुए थे। राष्ट्रीय हीरोज की तरह उनका इस्तकबाल हुआ।
अरे साहब, एक तो जब हम पहुंचे वहां पे दिल्ली में, वहां पे सारी कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर, हम हैरान हो गए। एक स्पेशल रिकॉर्डर आया था, उसके बाद एक के बाद दूसरी पार्टी, और जहाँ भी पार्टी में जाएं काफ़ी प्रेजेंट मिले। कैंप फोर क्लब में गए, उन्होंने हमको सोने की घड़ी दे दी।
तू है जहाँ है आसमां, मैं हूँ इस जमीन पे, हमको पर मिलना तो है कितनी भी हो।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच चल रहा। रेखा, बताएं क्या है ताज़ा स्कोर।
जी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वहां की उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर मौजूद रही। इस दौरान सौरव गांगुली ने उनका स्वागत किया। टीम ने बहुत ही बेहतरीन मैच का प्रदर्शन किया है, पूर्व कई क्रिकेटर भी वहां पर मौजूद रहे, और यहां पर अगर बात करें रिद्धिमान साहा की तो उन्होंने 100 विकेट पूरे करके एक रिकॉर्ड बना लिया है, जिसमें अभी तक सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का नाम दर्ज है, जिन्होंने पहले स्थान पर अपना नाम यहां पर दर्ज कराया हुआ है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो क्रिकेट प्लेयर हैं टेस्ट मैचेस में, और अब रिद्धिमान साहा ने ये रिकॉर्ड बनाया है और वो 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लाइव स्कोर्स की अगर हम बात करें तो भारत इस वक्त मैदान पर है। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने सबसे पहले बल्लेबाजी की थी और 106 रनों पर ही ये टीम सिमट गई थी। इंडिया की बात करें तो 136 रनों के साथ 2 विकेट जा चुके हैं और 38वां ओवर चल रहा है।
बहुत शुक्रिया रेखा आपका। और अब चलते चलते एक बार फिर प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बैठक अभी जारी है। बैठक में सीएम पद के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन गई है। यूरोप के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को आइवरी कोस्ट में पकड़ा गया है। एक ब्रितानी कारोबारी की हत्या के 20 साल पुराने मामले में इन दोनों की तलाश थी। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है और यूरोजोन में शामिल देशों को सार्वजनिक सेवाओं में और अधिक निवेश करने की जरूरत है। इराक के बगदाद में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में आज 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। दक्षिण अफ्रीका एयरलाइंस और ट्रेड यूनियन के बीच मध्यस्थता कर रहे दल का कहना है कि एयरलाइंस के खिलाफ जारी हड़ताल को खत्म करने पर सहमति बन गई है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की यह सभा आज यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।